जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीचन वल्लभ गिरिवर गोपीचन वल्लभ गिरिवर
Thank you. प्रभुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमदीज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के इस्कॉन बीबीटी फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद के जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के नामाचार्य हरिदास ठाकुर के अनंत कोटि वैष्णव वृंद के प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदी गौर भक्त वृंद के श्री श्री राधा कृष्ण गौर गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की वृंदावन मथुर धाम के नवदीप मायापुर धाम के पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की भक्ति देवी तुलसी देवी की गंगा मैया मई की श्री श्री राधा गोविंद देव की श्री श्री सीताराम लक्ष्मण मां की श्री श्री पंच तत्व की एकादशी महा महोत्सव की समवेत गौर भक्त वृंद की नितान गौर प्रेमानंदे और विष्णु सेमल डिवोटीज और विष्णु सेमल डिवोटीज और विष्णु सेमल डिवोटीज और विष्णु श्री गुरु ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ ज्ञानतिमिरान्धश्च ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामयं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलम् श्रीगुरोर्वैष्णवांश्च श्रीरूपां सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतां सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये पांचाकल्पतरूपश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण त्वजे एकादशी है श्रील प्रभुपाद लीलावृतम पढ़ेंगे तो ये अध्याय पांच है पिछली बार शायद अध्याय पांच की शुरुआत हुई थी तो श्रील प्रभुपाद लीलावृत लिखते हैं सत्स्वरूप दास गोस्वामी महाराज को वर्णन कर रहे हैं। इस बीच गौड़िया मठ का युद्ध चलता रहा। दोनों ही दलों के उद्देश्य दूषित थे और दोनों ही दल अपने आध्यात्मिक गुरु की शिक्षाओं से विरत हो गए थे। संपत्तियों के स्वामित्व का निर्माण निर्णय मुकदमेबाजी से कराने का प्रयत्न ही इस बात का प्रमाण था कि भक्त लोग अपने आध्यात्मिक गुरु की स्पष्ट इच्छा का जो उनके वसीयत नामे में उल्लेखित थी उल्लंघन कर रहे थे। मुकदमे का क्रम वर्षों तक चलता रहा लेकिन इस कानूनी लड़ाई ने न उन्हें एकता सिखाई न उनके मन को शुद्ध किया। एक न्यायालय का निर्णय अनंत वासुदेव के पक्ष में था लेकिन उससे उच्च न्यायालय ने मठ की दो तिहाई जायदाद कुंज बिहारी को दे दी और एक तिहाई वासुदेव को। यद्यपि वासुदेव को कम जायदाद मिली उनके अनुयायियों की संख्या अधिक थी। वे उन्हें मठ की शिक्षाओं को पुनर्जीवित करने पर अधिक तुले लगते थे लेकिन बाद में एक अवरत व्रत लेने के कारण जब संन्यास के आदेशों आदर्शों से उनका पतन हो गया तब उनके दल और भी छिन्न भिन्न हो गए। तो यहाँ वर्णन हो रहा है श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज अप्रकट हो गए, तो उसके ऊपर जो गौड़िया मठ है उसके कैसे अलग अलग विभाग हो गए। तो जनरली देखा जाता है कि कोई भी जो आंदोलन है वो 100 साल से अधिक टीका नहीं है, वो आचार्य जाने के बाद भी ज्यादातर हिस्ट्री में देखा गया है कि 100 साल अधिक से अधिक कोई आंदोलन टिकता है और उसके ऊपर बहुत सारे समस्याओं को सामना करना होता है उस आंदोलन को, या तो आंदोलन पूरी तरह से खत्म हो जाता है। इवन चैतन्य महाप्रभु ने भी जो आंदोलन शुरू किया, चैतन्य महाप्रभु के अप्रकट होने के बाद लगभग 100 साल वो बहुत तेजी से चला, उसके बाद एकदम से एक प्रकार से खत्म हो गया। लेकिन बाद में भक्ति विनोद ठाकुर, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और श्रील प्रभुपाद आदि उन्होंने इस आंदोलन को पुनर्जीवित किया। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की इच्छा थी, उन्होंने उनकी इच्छा थी कि उनके ऊपर कोई एक आचार्य ना हो। जनरली सब इवन सब संस्थाओं में या मठों में आचार्य एक के बाद एक आचार्य की परंपरा होती है, तो लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज चाहते थे कि उनके ऊपर ये जो आंदोलन उन्होंने शुरू किया था गौड़िया मठ, जिसकी 64 शाखाएं थी, जिनको मैनेज करने के लिए वो GBC बनाना चाह रहे थे। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जब प्रकट हुए तो जो भी उनके लीडिंग डिसाइपल्स थे उन्होंने अपने आप को स्थापित करने के लिए अपने आप आचार्य की पदवी लेने के लिए लड़ाई झगड़े शुरू किए। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज शरीर छोड़ने से पहले उन्होंने अपने कई सारे शिष्यों को बुलाया और कहा कि मेरे अनुयायी कोई मेरा शिष्य नहीं है, अधिकतर मेरे क्या है अनुयायी है, फॉलोअर्स है। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाल ने भी कहा कि आचार्य उदित होता है, आचार्य बनाया नहीं जाता, आचार्य अपने कार्यों से प्रकट होता है। तो उनके ऊपर जो अलग अलग दो गुट बने थे, जो सारे सारा धान या अलग अलग मठ या जो मंदिर है अपने कंट्रोल में करना चाह रहे थे, तो उनमें से एक थे वासुदेव और एक थे कुंज बिहारी। तो ये दोनों अलग अलग प्रकार से अपना अधिकार जता रहे थे और जो भक्त है अलग अलग ग्रुप में बढ़ गए थे, जिनके कारण उन्होंने एक दूसरे पर कोर्ट में मुकदमा डाला और जो गौड़िया मठ का जो धन आदि है वो प्राप्त करने के लिए प्रयास किया। अधिकतर सन्यासी अपने सिद्धांतों पर अटल बने रहे, लेकिन उनमें से बहुतों ने संघर्षरत दोनों दलों के अधिकार क्षेत्र का घृणावश त्याग कर दिया। भिन्न भिन्न व्यक्तियों ने अपने भिन्न भिन्न आश्रम बना लिए। तो जैसे देखा कि कुछ सन्यासियों का पतन हो गया है, तो कुछ सन्यासी, क्योंकि गौड़िया मठ में तो बहुत जल्दी सन्यास प्रदान किया जाता है, तो बहुत सारे सन्यासी भक्त थे या सन्यासी शिष्य थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के, तो उन्होंने देखा कि ये जो लीडिंग सन्यासी है वासुदेव, जो अपने आप को आचार्य के रूप में स्थापित करना चाह रहा है और अधिक से अधिक गौड़िया मठों को और उनके जो फॉलोअर्स हैं उनको अपने कब्जे में ले रहा है, तो धीरे धीरे उन्होंने संन्यास आश्रम के जो नियम हैं उनको पालन करना एक प्रकार से वर्जित कर दिया, एक श्री को अपने संग में रखा और जिसके कारण वो अपने संन्यास धर्म से पतित हो गए। तो उनको जो लीडर मान रहे थे अलग अलग जो सन्यासी थे ब्रह्मचारी थे, उन सबने क्या किया, उनको छोड़ दिया। फिर जो सन्यासी थे वो सब लोग अलग हो गए और उन सबने इंडिविजुअली स्वतंत्र रूप से अपना अपना जो मंदिर है अपना अपना मठ है उसकी स्थापना की। इसलिए आज भी हम देखते हैं तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने तो गौड़िया मठ स्थापित किया था, बल्कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने अधिकतर गौड़िया मठों का नाम अपने पिता भक्ति विनोद ठाकुर की याद में रखा है। भक्ति विनोद मठ ऐसे बहुत सारे नाम भक्ति विनोद से संबंधित थे, भक्ति विनोद ठाकुर से। तो ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने तो एक ही गौड़िया मठ नाम से आंदोलन शुरू किया था। लेकिन आजकल हम देखते हैं, चाहे नवदीप जाओ, चाहे जगन्नाथपुरी जाओ, चाहे मायापुर जाओ, जहां भी जाते हो आप, वृंदावन जाओ, तो जहां जहां चलते हैं तो सब जगह लाइन में गौड़िया मठ दिखाई देते हैं। हमें लगता है कि एक ही गौड़िया मठ है, लेकिन वास्तव में एक गौड़िया मठ नहीं है। अलग अलग उनके जो सन्यासी थे उन्होंने अपना अपना गौड़िया मठ शुरू किया, जैसे गौड़िया मिशन, चैतन्य गौड़िया मठ आदि। गौड़िया मठ का एकीकृत अस्तित्व जिसमें बहुत से मंदिरों, कई मुद्रण ग्रहों का समावेश था और जिसके अधीन सैकड़ों अनुयायी सहयोग पूर्वक कार्य करते थे, समाप्त हो गया। भक्त लोग भक्ति सिद्धांत सरस्वती के माध्यम से प्राप्त भगवान चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का पालन करते रहे, लेकिन सहयोग पूर्वक कार्य के अभाव में उनकी पूर्व सम्मिलित क्षमता में ह्रास हो गया। स्वामित्व और बड़प्पन का मायाजाल आध्यात्मिक गुरु के आदेश पर हावी हो गया। तो स्वामित्व मतलब स्वामित्व का जो भावना है, उस भावना के कारण यहाँ सत्स्वरूप महाराज लिखते हैं कि ये मायाजाल है। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने कहा कि जो प्रतिष्ठा आदि प्राप्त करने की जो इच्छा है वो इतनी प्रबल है क्योंकि कोई व्यक्ति माया का जो मूर्तिमान रूप है, स्त्री के लिए पुरुष है और पुरुष के लिए स्त्री है, या फिर धन आदि है, इंद्रिय तृप्ति का उपभोग करना, लेकिन उससे परे भी माया का और सूक्ष्म जाल क्या है, इनसे भी कोई व्यक्ति विरक्त हो सकता है धीरे धीरे, लेकिन फिर भी जो मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त करने की जो भावना है, स्वामित्व का जो भाव है, उससे मुक्त होना बहुत ही कठिन है। तो यहां देखते हैं कि ये जो स्वामित्व प्राप्त करने की भावना, बड़प्पन का जो भाव है, प्रतिष्ठा का भाव है, ये क्या करता है, गुरु के आदेशों को ढक देता है और गुरु के आदेशों को पालन करने की क्षमता शिष्य के हृदय से खत्म कर देता है। वो इतना अधिक हावी हो जाता है कि शिष्य निर्बल होकर गुरु के आदेशों का पालन करना पूर्ण रूप से भूल जाता है और भगवान चैतन्य की विश्वव्यापी शिक्षाओं के प्रचार आंदोलन का, श्री भक्ति सिद्धांत का उद्देश्य ध्वस्त हो गया। तो वास्तव में जैसे प्रभुपाद कहा करते थे, जो आज शिष्य है वो कल के लिए गुरु है। तो जो भी आचार्य हैं, पूर्ववर्ती आचार्य या गुरु वर्ग हैं, उनकी शिक्षाओं का आगे ले जाना ये महत्वपूर्ण कार्य एक शिष्य के हाथ में है। तो जो भी उद्देश्य था भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का, वो सारा जो उद्देश्य है वो एक प्रकार से ध्वस्त हो गया। अब भाई जहां भी जाते हैं उनके गुरु भाई उनकी ओर आकृष्ट हो जाते हैं। श्रीधर महाराज, वही श्रीधर जिनके साथ उन्होंने मुंबई में कार्य किया था और जिन्हें भी बहुत अच्छा भक्त और विद्वान मानते थे, अब ऐसे उनके बैनर्जी ने स्थित निवास पर मिले और ये समाचार उन्होंने श्रीधर महाराज को दिया, जो उन दिनों मायापुर में अपने आश्रम में रहते थे। श्रीधर महाराज गौड़िया मठ के गुरुओं से अलग हट गए थे, लेकिन एक सन्यासी के नाते वे अब भी प्रचार में लगे थे और वैष्णव साहित्य को प्रकाशित करने में रुचि रखते थे। वे कलकत्ता में आश्रम रखना चाहते थे, इसलिए अभय ने 7 नंबर वाले मकान में उनकी रासायनिक प्रयोगशाला के ऊपर उन्होंने 20 रुपए महीने पर तीसरी मंजिल में 4 कमरे किराए पर ले लिए। श्रील प्रभुपाद के बारे में वर्णन किया जा रहा है, जिसमें श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का प्रकट होने के उपरांत यहाँ निवास कर रहे थे कलकत्ता में अपने परिवार के साथ, और ये गुटबाजियों से अलग अलग सन्यासी तक आ गए थे। उन्होंने सोचा अच्छा है कि हम इंडिविजुअली प्रचार करते हैं, क्योंकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का आदेश था कृष्ण भावना का प्रचार करना, ग्रंथों की छपाई करना, उनका वितरण करना। तो उनके एक शिष्य थे श्रीधर महाराज, ये वैसे बहुत विद्वान थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ऐसे आचार्य थे कि उनके पास बहुत ही पढ़े लिखे बड़े बड़े उस समय के स्कॉलर जो युवा थे वो उनके चरणों में समर्पित हो गए थे। और उनमें से श्रीधर महाराज थे। श्रीधर महाराज वो थे जिन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज शरीर त्यागने के पूर्व उन्होंने इच्छा व्यक्त की थी कि आप क्या गाओ, श्री रूप मंजरी पद। इस गीत को श्रीधर महाराज ने गाया था और प्रभुपाद के बहुत अधिक घनिष्ठ मित्र थे श्रीधर महाराज। तो ऐसे श्रीधर महाराज कलकत्ता आते हैं और उनकी इच्छा थी कि कलकत्ता में भी प्रचार में करूं, तो भक्ति प्रभुपाद ने या अभय ने हम उनको सहायता की। जहां वो रह रहे थे वहीं चौथी मंजिल पर चार कमरे उन्होंने किराए पर लिए और उनको रहने की व्यवस्था की। अब श्रीधर महाराज, पुरी महाराज और भक्ति सारंग महाराज जब कभी कलकत्ता आते तो वे एक एक छोटे कमरे में अलग अलग ठहर पाते। सन्यासियों और ब्रह्मचारियों का वहां नियमित आश्रम बन गया और श्रीधर महाराज ने सामने एक साइन बोर्ड लगा दिया, देवानंद गौड़िया, देवानंद सरस्वती मठ। हम नवदीप में भी जाते हो आज तो ये उनका मठ वहां भी है, देवानंद सरस्वती गौड़िया मठ। श्रीधर महाराज द्वारा मायापुर में एक मठ और कलकत्ता में उसकी शाखा की स्थापना गौड़िया मठ में फूट का उत्तर था। मुकदमे और उसकी अपील तथा दर अपील के परिणाम की प्रतीक्षा किए बिना वे अन्य सन्यासियों की तरह नए शिष्यों को दीक्षित करने और प्रचार करने में लग गए। अभय को श्रीधर महाराज और दूसरों को जो छोटे से आश्रम में उनके सहयोगी बन गए थे प्रोत्साहन देने में प्रसन्नता होती। यहाँ अभय और श्रीधर महाराज तथा उनके अनुयायी झगड़ालू गुटों से अलग रहकर कृष्ण भावनामृत के प्रचार की अपनी योजनाओं को कार्यान्वित कर सकते थे। सन्यासी अपना भोजन अलग बनाते, पूजा करते और सुबह शाम कीर्तन और भाषण करते। अभय अपने परिवार के साथ रहते थे, वे भोजन और पूजा अलग करते थे, लेकिन श्रीमद् भागवत पर श्रीधर महाराज से चर्चा करने में प्राय जाया करते थे। वे अपने छत से अपने आध्यात्मिक गुरु द्वारा बाग बाजार में निर्मित गौड़िया मठ भवन की ऊंची गुंबद देखा करते थे, जिसके स्वामित्व के लिए अब दो दलों में घोर संघर्ष चल रहा था। तो प्रभुपाद का मकान नजदीकी था, जहाँ जिस गौड़िया मठ बाग बाजार में जो सबसे बड़ा गौड़िया मठ है भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने स्थापित किया था। और हम हर बार सुनते हैं कि जब उसके ओपनिंग होने वाले थे तो उससे पहले ही जो अलग अलग भक्त थे, निवासी भक्त, वो आपस में लड़ाई झगड़े करने लगे कि कौन कौन सा रूम लेगा, कौन सा रूम मुझे होगा, कौन सा रूम किसी और के लिए होगा। तो आपस में लड़ाई झगड़े कर रहे थे, जिसको देखकर भक्ति सिद्धार्थ सरस्वती महाराज ने श्रील प्रभुपाद कहा, प्रभुपाद को कहा था कि आगुन जल गए, मतलब अभी आग लग गई है, इससे अच्छा है कि ये लोग कमरों के लिए मठ के लिए आपस में लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, अच्छा है कि इस मठ का जो मार्बल आदि है इसको मैं निकालू और इसको बेचो और ग्रंथों की छपाई करो। तो वही गौड़िया मठ जिसके पास श्रील प्रभुपाद अपने गृहस्थ जीवन के समय में निवास करते थे। श्रीधर महाराज और उनके सहायकों के प्रचार कार्यक्रमों में अभय प्राय साथ देते और उनमें मृदंग बजाते। और जब श्रीधर महाराज बीमार पड़ जाते तब अभय उनके अनुयायियों के साथ प्रचार कार्यक्रमों का नेतृत्व करते, कीर्तन करते, मृदंग बजाते और श्रीमद् भागवतम पर भाषण या लेक्चर देते। श्रीधर महाराज कह रहे हैं, धन कमाने के लिए कड़ी मेहनत करते अभय हमें नहीं दिखाई दिए। जो श्रीधर महाराज हैं वो अपने वचन बोल रहे हैं श्रील प्रभुपाद के बारे में, वो कहते कि मैंने कभी भी नहीं देखा कि ये जो अभय है धन कमाने के लिए बहुत कठोर परिश्रम कर रहा है। ना वे धनी थे, नहीं उनके पास बहुत पैसे थे। पारिवारिक मामलों की तुलना में वे आध्यात्मिक मामलों की ओर अधिक आकृष्ट थे। उन्होंने अपने व्यवसाय की संभावनाओं के संबंध में मुझसे कभी विचार विमर्श नहीं किया कि व्यवसाय में लाभ होने वाला है या घाटा। अथवा वो ये करने की योजना बना रहे हैं या वो उनके पास इतना आर्थिक साधन नहीं था कि उनमें से भी कुछ मिशन को दे सकने की स्थिति में हो। तो श्रील प्रभुपाद का जो गृहस्थ जीवन में जब थे तो उस समय भी अधिकतर जो झुकाव है वो प्रचार के प्रति था। यह अधिक झुकाव नहीं था कि धन कैसे कठोर परिश्रम करके कमाया जाए। क्या जब श्रीधर महाराज कहते थे मुझसे मिलते भी थे तो कभी भी अपने व्यवसाय धन आदि के बारे में चर्चा नहीं करते थे। सदैव आकर श्रीमद भागवतम आदि की मुझसे चर्चा किया करते थे। अब वैष्णव साहित्य लिखने के संबंध में गंभीरता पूर्वक विचार करने लगे। उनके आध्यात्मिक गुरु उनसे बहुत प्रसन्न थे और द हार्मोनिस्ट के संपादक से उन्होंने कहा था वो जो कुछ लिखे उसे प्रकाशित करना। जब प्रभुपाद ने मुंबई में थे तब उन्होंने एक कविता लिखी थी अपने गुरु महाराज के आविर्भाव व्यास पूजा के बारे में या उनके गुणों उनके ग्लोरीज के बारे में कविता लिखी थी। जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने उसको पढ़ा तो बहुत खुश हो गए और उन्होंने कहा कि ये अभय मेरे मन को जानता है, मेरे हृदय को जानता है। तो जब प्रभुपाद मुंबई में रहते थे और श्रीधर महाराज सारंग महाराज आदि ये भी मुंबई में थे, मुंबई सेंट्रल, तो वहां इन्होंने एक छोटा सा कमरा लेकर प्रचार शुरू किया था। और श्रीधर महाराज कहा करते थे कि आप इतने एक्सपर्ट हो, आप इस मंदिर के प्रेसिडेंट बन जाओ। उन्होंने बल्कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को भी कहा कि अभय सब प्रकार से कुशल है, भाषण देने में, कीर्तन करने में, मृदंग बजाने में और प्रवचन देने में भी और फंड रेज करने में भी कुशल है। तो श्रीधर महाराज ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को रिकमेंड किया था कि इनको आप मुंबई का प्रेसिडेंट बना दीजिए मंदिर का। तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहा नहीं, अभी नहीं, अभी वो जो कर रहा है वो करने दीजिए, एक समय आएगा वो सब कुछ करेगा। तो प्रभुपाद ने जब कई सारे आर्टिकल्स लिखे थे या जो कविता लिखी थी अपने गुरु महाराज के गुणगान में, तो जब उसको पढ़ा था भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने, तो जो हार्मोनिस पत्रिका है उसके जो संपादक थे भक्ति सिद्धांत महाराज ने उनको आदेश दिया था कि अभय जो कुछ लिखेगा आपको इस पत्रिका में प्रकाशित करना चाहिए, यदि भी अपने व्यवसाय के लाभों में किसी प्रकार वृद्धि कर सके तो उसका उपयोग अंग्रेजी में पुस्तकें प्रकाशित करने में किया जा सकता था। क्योंकि उनके आध्यात्मिक गुरु ने कहा था कि यदि तुम्हारे पास कभी पैसे हो तो पुस्तकें छापना। यह तो निश्चित ही था कि गौड़िया मठ से ये काम होने का नहीं था। कुंज बिहारी ने मुकदमे का खर्च निकालने के लिए भक्ति सिद्धांत के छाप खानों को बेच दिया था। तो अलग अलग वैरायटीज है शिष्यों की या भक्तों की। एक तो जिनके पास कुछ भी सुविधा नहीं है, अपने गृहस्थ जीवन में है और वो अधिकार भी नहीं जता सकते कि ये मेरे गुरु महाराज का प्रॉपर्टी है, मंदिर मठ आदि। तो बाहर रहकर भी अपने गृहस्थ जीवन में भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज सदैव अपने गुरु के आदेशों का चिंतन करते थे और वो सोचते थे कि कैसे उनके आदेशों की पूर्ति की जाए। बल्कि वो ये सोचते थे कि जो भी मैं धन कमाऊंगा उस धन कमाकर अंग्रेजी में ग्रंथों को छपाऊंगा, जो मेरे गुरु महाराज की इच्छा है। और बल्कि दूसरे शिष्य थे जो जिन्होंने पूरे मंदिर या मठ आदि अपने कब्जे में किए थे और मुकदमा या जो कोर्ट केस के लिए जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के जो छाप खाने हैं उनको बेचा जा रहा था, जिसके द्वारा वो लड़ाई झगड़े के लिए पैसे इकट्ठा करते थे। नहीं, अभय को अकेले ही ये कार्य करना होगा। उन्हें अपना व्यवसाय चलाना था और साथ ही लिखने और पुस्तकें छपाने के लिए भी प्रयत्नशील होना था। और श्री भक्ति सिद्धांत का भी नुस्खा यही था, अच्छा है कि वह आपके समुदाय से भाग रह रहा है, जब समय आएगा तो वह स्वयं ही सब कुछ करेगा। तो जो आध्यात्मिक गुरु है वो अपने शिष्य के फ्यूचर के बारे में भी जानते हैं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को पूर्ण रूप से पता था कि ये वास्तव में कृष्ण भावनामृत का प्रचार करेगा। 1939 में अभय ने इंट्रोडक्शन टू भगवत गीता लिखा। ये कार्य छोटा था, लेकिन वह एक दिन उनके द्वारा भगवत गीता के अंग्रेजी में टीका समेत अनुवाद का कार्य लिए जाने के इरादे का संकेत था। यह सच है कि उस ग्रंथ की अंग्रेजी में अनेक टीकाएं मौजूद थी, लेकिन उनमें से अधिकतर के लेखक निर्विशेषवादी या दूसरे थे, जो गीता के मूल भाव को कुरुक्षेत्र की रणभूमि में स्वयं भगवान कृष्ण के मुख से भगवत गीता सुनते हुए अर्जुन के मनोभाव को अभिव्यक्त करने में असमर्थ थे। तो 1939 में ही श्रील प्रभुपाद ने कार्य आरंभ कर दिया भगवत गीता को लिखना। तो उस समय उन्होंने भगवत गीता का जो इंट्रोडक्शन है वो लिखना शुरू किया। तो वो बल्कि कई सारे गीता पर संस्करण प्राप्त थे अंग्रेजी भाषा में, लेकिन कोई भी ऐसा संस्करण नहीं था जो कृष्ण का जो मनोभाव है यथारूप वो प्रकट कर सके। तो श्रील प्रभुपाद जैसे आज जो हम भगवद गीता पढ़ते हैं, भगवद गीता एज इट इज, उसका जो इंट्रोडक्शन है प्रभुपाद ने, प्रभुपाद जब अमेरिका गए तो अकेले रहा करते थे, सैली अग्रवाल आदि के पास से छोड़कर जब वो बावरी स्ट्रीट में गए थे तो वहां एक कमरे में प्रभुपाद रहा करते थे, जो अंधेरा सा कमरा था जिसमें एक छोटा सा बल्ब जला करता था, और उनके पास कोई और ना बैठने के लिए चदरे थे, ना कोई सामान था, ना डेस्क था। तो जो भारत से टीन का जो बक्सा है अपने साथ प्रभुपाद ले गए थे, जिसमें उनका थोड़ा सामान या कुछ किताबें होगी, उसी को सामने रखते थे, एक स्टडी टेबल जैसे आप सामने रखते हो, उसके ऊपर एक चदर डालकर उसी से ही उस पर ही प्रभुपाद लिखा करते थे। तो प्रभुपाद को उस समय एक टेप रिकॉर्डर मिला था, जिसमें प्रभुपाद रिकॉर्ड करते थे कभी कभी कीर्तन या फिर कभी वो प्रवचन देते थे। तो उन्होंने एक दिन लगभग 2 घंटे के लिए अकेले थे, कोई और उनके पास नहीं था, ना किसी को प्रवचन आदि देते थे, तो रोम में ही उन्होंने 4 दीवारों को प्रवचन दिया, 2-3 घंटे का लंबा, और उन्होंने रिकॉर्ड किया और उसी को आगे चलकर ट्रांसक्राइब किया, जो क्या है भगवत गीता का जो इंट्रोडक्शन है हम पढ़ते 20-30 पेज का। तो प्रभुपाद ने 1939 में भगवत गीता लिखना शुरू किया था, उनके गुरु के आदेशों का पालन करने की उनकी शुरुआत थी। इसलिए उन्होंने आरंभ कर दिया, जब भी उन्हें समय मिलता वे लिखते, यद्यपि एक मिन मेखी व्याकरण को उनकी अंग्रेजी में दोष दिखाई दे सकता था, लेकिन उनका आशय हमेशा स्पष्ट होता था। अपनी प्रस्तावना में अभय ने उस समय का उल्लेख किया जब एक स्कूली लड़के के रूप में उन्होंने विद्यारत्न नामक एक भाषण सुना था। भाषण का प्रतिपाद्य यह था कि भगवान का अस्तित्व नहीं है और नहीं उनका अस्तित्व हो सकता है। यदि भगवान होते तो सभी धार्मिक प्रतिद्वंदिताओं का अंत करने के लिए वे पृथ्वी पर अवश्य प्रकट होते, किंतु चूंकि भगवान ने मनुष्य को इस प्रकार अनुग्रहित नहीं किया है, इसलिए हमें अपने मन से उनके अस्तित्व का विचार बिल्कुल निकाल देना चाहिए। अभय ने आगे लिखा कि श्रोताओं में सभी कम उम्र के लड़के थे, अतः वे भाषण के विषय वस्तु की गहराई में नहीं गए, तो भी भाषण कर्ता के तर्कों से प्रभावित होकर अधिकांश लड़के नास्तिकता के ऊंचे विचारों को लेकर घर गए और इस प्रकार नास्तिक बन गए। शबनम कितना पावरफुल है। तो प्रभुपाद कहते कि विद्यारत्न नामक एक लेक्चर उनके स्कूल डेज में हुआ था, उस समय उस जो भी प्रवचन करता था लेक्चरर था, उन्होंने नास्तिकवाद को प्रस्तुत किया था, जिसके कारण जो लड़के हैं स्कूल के वो सारे नास्तिक बन गए थे। अभय को नास्तिकता के निष्कर्ष से संतोष नहीं था, क्योंकि मेरे पिताजी ने मुझे श्री राधा गोविंद की आराधना में प्रशिक्षित किया था, लेकिन विद्यारत्न भाषण सुनने के बाद नास्तिकता और अनास्तिकता के बीच में मेरे मन में संघर्ष छिड़ गया। बाद में अपने आध्यात्मिक गुरु श्री भक्ति सिद्धांत से सुनकर अभय की समझ में आ गया था कि भगवान का अस्तित्व कार्य के हर क्षेत्र में है, लेकिन उसे देखने की दृष्टि हमारे पास नहीं है। अभय ने लिखा, यदि भगवान स्वयं को पृथ्वी पर प्रत्यक्ष भी करे तो संघर्षरत सांसारिक जीव आपसी विग्रह रोककर उन्हें या उनके अवतार को अपने मूढ़तावश देखेंगे नहीं। भगवान के अनुग्रह से ऐसा कर सकने का जन्म सिद्ध अधिकार केवल व्यक्तिगत आत्मा को है। भगवत गीता विद्या का सच्चा रत्न है और गीता में भगवान कृष्ण संसार में लड़ने वाले लोगों को घोषित करते हैं, मैं यहाँ हूँ, लड़ाई न करो। वो नास्तिक जिसने विद्या रत्न के विषय में भाषण दिया था रत्न से अंधा हो गया था और इसलिए श्री भगवान को न वो देख सकता था न उनसे अभिभूत हो सकता था, अतः वह दूसरों को भी तथाकथित रत्न बनने के लिए राजी करने के उद्देश्य से बोलता गया था। अपने आध्यात्मिक गुरु के अनुकरण पर अभय ने शुद्ध ईश्वरवाद के विरोधियों का सामना करने में आक्रामक प्रवृत्ति का प्रदर्शन किया। अपने आध्यात्मिक गुरु के आदेशों का पालन करते हुए अपने को अंग्रेजी में प्रचारकर्ता के रूप में विकसित करने में अभय केवल विद्वत्ता पूर्ण तटस्थ प्रस्तुतिकरण नहीं कर रहे थे, वे लड़ाई के लिए भी राजी और तत्पर थे। चाहे वो लड़ाई आधुनिक अज्ञेयवाद के विरुद्ध हो या वैष्णव धर्म के सनातन शत्रु मायावादी निर्विशेषवाद के विरुद्ध हो। यद्यपि भगवत गीता में आख्याय श्री कृष्ण के प्रति समर्पण का तरीका बताने वाले विद्वान कम ही थे, लेकिन ज्ञान का सारांश प्रस्तुत करने वाले ग्रंथ के रूप में भगवत गीता का सम्मान लगभग सभी करते थे। इसलिए श्री भगवान और धर्म के विषय में भ्रम फैलाने वालों का सामना करने के लिए गीता सर्वोत्तम उपाय थी। अज्ञेयवादियों, देवात्मरोपण वादियों, मानवीकरण वादियों, निर्विशेष वादियों, एकादिदेव वादियों, सर्वेश्वर वादियों और अद्वैत वादियों के लिए गीता एक चुनौती थी। यद्यपि गीता पर 600 से भी अधिक टीकाएं लिखी जा चुकी थी, लेकिन वे उन लोगों द्वारा लिखी गई थी जिनके मन में श्री भगवान के प्रति आंतरिक घृणा थी और इसलिए वे अपूर्ण थी। अभय ने लिखा कि ऐसे ईर्ष्यालु व्यक्ति भगवत गीता के वास्तविक अर्थ को नहीं समझ सकते, जैसे बोतल में बंद शहद तक मक्खी की पहुंच नहीं हो सकती। अभय ने भारतीय संस्कृति का वर्णन उसके विचारों की गहराई और निष्कर्षों की प्रत्यक्ष संश्लिष्टता के कारण उसे अपार सागर बताकर किया। उन्होंने घोषणा की कि लेकिन इस पुस्तक में प्राप्त धर्म ग्रंथों के हवाले से जो भारतीय संस्कृति और विचार का लिखित इतिहास है, मैं सिद्ध कर दूंगा कि श्री कृष्ण स्वयं परम भगवान है। साथ बैनर्जी लेन में रहने वाले सन्यासी अभय के विचार और इरादों से प्रभावित हुए। चूंकि ये परंपरा थी कि एक विशेष रूप से योग्य वैष्णव को उसके गुणों के अनुसार कोई उपाधि दी जाए, इसलिए भक्ति सारंग गोस्वामी ने अभय को भक्ति सिद्धांत की उपाधि देनी चाहिए। तो प्रभुपाद के जो विचार है, उनके विद्वत्ता है, उनसे उनके जो सन्यासी गुरु भाई है वो भी बहुत अधिक प्रभावित थे। वो सोचने लगे कि इनको भी कुछ उपाधि देनी चाहिए। तो भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज ने सोचा कि इनको भक्ति सिद्धांत की उपाधि प्रदान करो, लेकिन श्रीधर महाराज ने इसे अनुपयुक्त समझा कि अभय को वही उपाधि प्रदान की जाए जो उनके आध्यात्मिक गुरु की थी और उन्होंने कहा कि अभय की उपाधि को भक्ति वेदांत कर दिया जाए। अभय अभारे थे, उनकी उपाधि में धर्म के प्रति भक्ति का उस गहन विद्वत्ता से मेल था जो भगवान चैतन्य के विद्वान शिष्यों के द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही थी। उन्हें अपने गुरु भाइयों का यह रवैया पसंद आया और उन्होंने इस उपाधि को कृष्ण भावनावृत के प्रचार के अपने आध्यात्मिक मार्ग के प्रति और अधिक प्रतिबद्धता के रूप में स्वीकार किया। अब है श्रीधर महाराज के संसर्ग में बराबर बने रहे और श्रीमद् भागवत के विषय में उनसे उनका विचार विमर्श चलता रहा। उन्हें व्यापक प्रचार के लिए अभय उत्साहित करते। यद्यपि श्रीधर महाराज प्रचारक की तुलना में विद्वान अधिक थे और प्रचार हेतु इधर उधर जाने से सब कुछ आते थे। कई अवसरों पर अभय ने श्रीधर महाराज को अपने साथ जाने के लिए और गांधी और नेहरू पर ये अभियोग लगाने के लिए कि वे भगवद गीता के सिद्धांतों का पालन क्यों नहीं करते मनाने का प्रयास किया। तो श्रीधर महाराज बाहर निकलने के लिए इतने उत्सुक नहीं होते थे। ये जो अभय है श्रील प्रभुपाद है वो उनको अलग अलग कार्यक्रमों में ले जाते थे, बल्कि इनकी इच्छा थी कि इनको उनके पास भी ले जाऊं, नेहरू और गांधी के पास, हाँ ये बताने के लिए कि आप क्यों नहीं भगवत गीता के सिद्धांतों का पालन अपने जीवन में करते। सात बनर्जी लेन के आध्यात्मिक सहचार्य का एक फल प्रपन्न जीवनामृत नामक ग्रंथ था जिसे श्रीधर महाराज ने संकलित किया। यह वैष्णव धर्म के विभिन्न ग्रंथों के श्लोकों का एक संग्रह था जिसमें रूप गोस्वामी की रचनाओं में से भी उद्धरण मिलते थे। समर्पण के छह विभागों के अनुसार ये छह अध्यायों में विभाजित था। देवानंद सरस्वती मठ के सन्यासियों के साथ मिलकर अभय ने इसके प्रकाशन के लिए अर्थ व्यवस्था की। तो श्रीधर महाराज ने ग्रंथ लिखा था प्रपन्नामृत, प्रपन्न जीवनामृत, जिसकी छपाई की व्यवस्था वो शरणागति के जो छह लक्षण है उसके बारे में वर्णित करता है। तो श्रील प्रभुपाद ने उस ग्रंथ के प्रकाशन के लिए धन की व्यवस्था की थी। इस प्रकार मित्रों के सामूहिक प्रयत्न से ये प्रकाशित हुआ सितंबर 3, 1939। भारत के वायसराय लॉर्ड लिनली थगो ने घोषणा की कि भारत जर्मनी के साथ युद्ध की स्थिति में है। इस प्रकार इंग्लैंड ने भारत वासियों की सहमति के बिना ही भारत को युद्ध में झोंक दिया। यद्यपि स्वतंत्रता के लिए कटिबद्ध भारत को निश्चित रूप से ये विदेशी अधिकार प्रदर्शन बहुत बुरा लगा, लेकिन युद्ध के विषय में लोगों के विचार भिन्न भिन्न थे। भारत स्वतंत्रता चाहता था तब भी पाश्चात्य अधिनायकवाद के विरुद्ध सह राष्ट्रों के पक्ष का वह समर्थन था। पूर्व की ओर से साम्राज्यवादी जापान से उसे आक्रमण का डर था। एक लेखक ने उस समय की भावना से भरे नई दिल्ली के एक विद्यार्थी से पूछा, चूंकि आप अंग्रेजों से घृणा करते हैं, क्या आप ये प्रसन्न करेंगे कि जापान भारत पर आक्रमण करे और उसे जीत ले? विद्यार्थी ने उत्तर दिया, नहीं, लेकिन हम भारतवासी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वे अंग्रेजों को उस आघात को सहन करने की शक्ति दे जिसके वे पात्र हैं। युद्ध आरंभ होने के समय यद्यपि भारत की सेना में केवल 1,75,000 सैनिक थे, अंग्रेजों ने किसी तरह उनकी संख्या बढ़ाकर 20,00,000 कर दी। अनिवार्य भर्ती नहीं हुई, लेकिन अंग्रेजों ने सारे देश में भर्ती करने वाले एजेंट भेजे, विशेषकर पंजाब में, जहां स्थानीय गरीब वर्ग के लोगों के लिए सैनिक सेवा का बड़ा आकर्षण था। पंजाबी बड़े अच्छे लड़ाकू साबित हुए, जबकि बंगालियों की भर्ती अधिकारियों, डॉक्टर, ठेकेदारों और क्लर्क के रूप में हुई। भारतीय सैनिकों को इजिप्ट, इराक, सीरिया, फारस, मलाया, बर्मा और आसाम में लड़ाई के मोर्चे पर भेजा गया। एक बार अंग्रेज भारतीयों को युद्ध के लिए सन्नत करने की कोशिश कर रहे थे, दूसरी ओर राष्ट्रीय आंदोलन जो पिछले 20 वर्षों से अधिक अभय से रुक रुक कर चलता आया था बहुत सक्रिय बन गया। कांग्रेस दल के सदस्यों ने युद्ध के कार्य में सहयोग देने से इनकार कर दिया और भारत की स्वतंत्रता के लिए गारंटी चाहिए। कुछ ने सोचा कि इंग्लैंड जर्मनी के साथ बुरी तरह फंसा है, इसलिए विद्रोह करके शक्तिपूर्वक स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए वो बहुत उपयुक्त समय है। गांधी जी की स्थिति एकांत शांतिवादी की थी और उन्होंने भारत की रक्षा के लिए भी शस्त्र ग्रहण करने की नीति का विरोध किया था, लेकिन 1942 के आते आते वे अंग्रेजों के और अधिक विरोधी बन गए और उनके प्रति भारत छोड़ो की सीधी स्पष्ट नीति का ऐलान किया। हजारों भारतीयों ने नारे लगाकर और यहाँ तक कि रेल की लाइनें तोड़कर उनके आंदोलन का समर्थन किया। अभय के युद्ध प्रिय पुराने स्कूल के साथी सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों से अपने ढंग की लड़ाई छेड़ दी। वे जर्मनी के हिटलर से मिले और उसे राजी कर लिया था कि जब जर्मनों के हाथों भारतीय सैनिक पकड़े जाएंगे तो जर्मनी उन्हें बोस्को वापस कर देगा और वे उन्हें अपने राष्ट्रीय सेना में रखेंगे। इस सेना को लेकर बोस की योजना भारत लौटकर भगत पर आक्रमण करके और भारत भूमि से अंग्रेजों को भगा देने की थी, किंतु जर्मनी में अपने प्रगति से असंतुष्ट होकर बोस ने जापान और टोको के साथ एक ऐसा ही समझौता किया और शीघ्र ही हजारों गुरखे और सिख अंग्रेजी सेना छोड़कर सिंगापुर में बोस के स्वतंत्रता सेनानियों में भर्ती हो गए। बोस उत्तर की ओर से भारत पर आक्रमण करने के लिए सेना तैयार करने लगे। तब 1943 में अंग्रेजों ने देखा कि जापानी जो बर्मा को पहले ही जीत चुके थे भारत के द्वार पर पहुंच गए हैं। बंगाल के बिल्कुल निकट वंचित करो नामक नीति का अनुसरण करते हुए अंग्रेजों द्वारा खाद्य सामग्री ले जाने वाली बहुत सी भारतीय नावों को डुबो दिया गया और धान की बड़ी फसलें नष्ट कर दी गई। इस डर से कि कहीं ये सब शत्रु के हाथ में न पड़ जाए, इसका परिणाम यह हुआ कि अन्न के अभाव में और व्यापार के लिए नावों के बिना भारतीय हकालग्रस्त होकर मरने लगे। 150 वर्षों के बीच बंगाल में पड़े अकालों में ये अकाल सबसे भयानक था। सरकार ने खाद्यान्न की कीमती पर से सभी कंट्रोल हटा दिए और ऐसे लोग जो गगन स्पर्शी भावों पर खाद्यान्न नहीं खरीद सकते थे कलकत्ता की सड़कों पर मरने लगे। श्री प्रभुपाद कहते हैं, मुझे अनुभव हुआ सरकार ने कृत्रिम अकाल पैदा किया था। युद्ध चल रहा था इसलिए श्रीमान चर्चिल की नीति लोगों को अभाव ग्रस्त रखने की थी जिससे वे स्वेच्छा से सैनिक बने, इसलिए ये नीति कार्यान्वित की गई। बड़े लोगों ने सारा चावल इकट्ठा कर लिया। चावल 6 रुपए मन बिक रहा था, अचानक वो 50 रुपए मन बिकने लगा। मैं बनिए की दुकान में चावल खरीदने गया था, अचानक बनिए ने कहा, नहीं नहीं मैं और नहीं बेचूंगा। उस समय चावल 6 रुपए मन था इसलिए वो एकाएक बेचने को तैयार नहीं था। कुछ घंटे बाद मैं फिर खरीदने गया और चावल का भाव 50 रुपए मन हो गया था। सरकार द्वारा नियुक्त एजेंट चावल और दूसरी चीजें जो हर दिन की आवश्यकताएं हैं खरीदने लगे। वे कोई भी कीमत दे सकते हैं क्योंकि मुद्रा उनके हाथों में है। वे तथाकथित सैकड़ों डॉलर के नोट छाप सकते हैं और भुगतान कर सकते हैं। आदमी ये सोचकर संतुष्ट हो जाता है कि मेरे पास सैकड़ों डॉलर हैं, लेकिन है वो कागज का एक टुकड़ा। ये नीति थी, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, चावल नहीं है तो दूसरा मार्ग खुला है। हाँ, तुम सिपाही बन जाओ, बहुत सारा पैसा मिलेगा। गरीबी के कारण लोग बाहर जाने लगे। मैंने देखा है बाजार में चावल उपलब्ध नहीं था, लोग भूखे थे, मर रहे थे। अभय ने अपने परिवार को जिंदा रखने भर को किसी तरह चावल खरीद लिया, लेकिन उन्होंने देखा कि भीख मंगों की आबादी नित्य सैकड़ों की संख्या में बढ़ रही थी। वे देखते कि हर महीने सड़कों की पटरियों पर और खुली जगहों में भीख मंगों की भीड़ उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही थी। भीख मंगे कृत्रिम चूल्हे बनाकर अपना खाना पकाते और खुले में या पेड़ों के नीचे सोते थे। उन्होंने देखा कि भूख से मरते बच्चे एक और खाने के लिए कूड़े के ढेरों को छानते फिरते। उनके लिए अगला कदम केवल ये रह गया था कि कूड़े कचरे में अपने हिस्से के लिए वे कुत्तों से लड़ाई करें। और कलकत्ता की सड़कों में ये भी एक आम दृश्य हो गया। अंग्रेज सरकार के पास युद्ध के कामों के अतिरिक्त और किसी काम के लिए समय नहीं था। उसकी कोशिश केवल उन लोगों को बचाने की थी जो युद्ध के लिए आवश्यक थे। आम जन समुदाय के लिए साम्राज्य का नुस्खा सीधा साधा और एक साही था, भूखे मरो। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, कहते हैं, एक अमरीकी सज्जन इस समय मौजूद थे। उनकी टिप्पणी थी, लोग इस तरह भूख से मर रहे हैं, हमारे देश में तो क्रांति हो जाती। हाँ, लेकिन भारत की जनता की शिक्षा इस प्रकार हुई है कि कृत्रिम अकाल का सामना करते हुए भी दूसरों की संपत्ति को चुराने की और उसकी प्रवृत्ति चुराने की ओर उसकी प्रवृत्ति नहीं हुई। लोग भूख से मर रहे थे, इतने पर भी उनका विचार था कि ठीक है, ये सब कुछ भगवान का दिया हुआ है। वैदिक सभ्यता का यही मूलभूत सिद्धांत है। अब ये जानते थे कि प्राकृतिक नियमों के अंतर्गत अभाव का कोई स्थान नहीं है। भगवान की व्यवस्था से पृथ्वी पर्याप्त भोजन पैदा कर सकती है। कठिनाई तो मनुष्यों के लोभ के कारण थी। संसार में अभाव या कमी नहीं है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने कहा था, कमी केवल कृष्ण भावनामृत की है। और अभय ने 1943 के अकाल को इसी दृष्टि से देखा। पहले से भी अधिक अब ये आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि प्रासंगिक लगती थी। कृष्ण भावनामृत सर्वप्रथम आवश्यक है, अन्यथा मनुष्य को उसकी इस दूषित मनोवृत्ति से कैसे रोका जा सकता है, जिसके वशीभूत होकर वो लोभी बनता है, संग्रह करता है, युद्ध करता है और इस प्रकार लाखों के लिए दुर्दशा उत्पन्न करता है। अब भारत में अंग्रेजों के घृणित कार्यों को देख चुके थे। वे यहाँ के जुलाहों के अंगूठे काट देते थे, जिससे उनके द्वारा बुना गया सूती कपड़ा विदेशी कपड़े का मुकाबला ना कर सके। वे बेकसूर बेहतियार नागरिकों को सीधे गोली मार देते थे। वे जानबूझकर अकाल पैदा करते थे। वे इस भ्रम का प्रचार करते थे कि भारतीय सभ्यता बहुत पिछड़ी हुई है। इतना होने पर भी अभय को विश्वास नहीं था कि भारत के स्वतंत्र हो जाने पर स्थिति में अवश्य ही सुधार हो जाएगा। जब तक कि यहाँ का नेतृत्व कृष्ण भावनामृत में सरोवर न हो और यह न गांधी के विषय में सत्य था न सुभाष चंद्र बोस के विषय में, तब तक सरकार देश को कोई वास्तविक हल नहीं दे सकती, भले ही कोई काम चला व्यवस्था उसके द्वारा संभव हो जाए। धर्म ग्रंथों और संतों द्वारा कथित ईश्वरीय नियमों के पालन बिना कोई भी सरकार मानव दुखों में वृद्धि ही करेगी। तब प्रतिदिन कलकत्ता पर बम वर्षा होने लगी। बम कुछ विशेष क्षेत्रों पर ही गिराए जाते, जैसे कीर्तनपुर बंदरगाह पर और उत्तर कलकत्ता में शाम बाजार पर, जो सीताकांत बैनर्जी लेन में अभय के मकान के बिल्कुल निकट था। अमरीकी हवाई जहाज चीन और जापान के लक्ष्यों पर आक्रमण करने के लिए कलकत्ता के निकट के हवाई अड्डों से उड़ते थे, इसलिए कलकत्ता पर हवाई आक्रमण अनिवार्य प्रतीकारात्मक प्रतीत होते थे। ये जवाबी हवाई हमले जापान की ओर से थे। या क्या ऐसा था, कुछ लोगों का कहना था कि ये आक्रमण सुभाष चंद्र बोस की सेना की ओर से थे, क्योंकि बम अधिकतर यूरोपियनों के घरों पर ही गिरते थे। लेकिन कलकत्ता के निवासियों के लिए इससे कोई अंतर नहीं पड़ता था कि आक्रमण किसकी ओर से हो रहे थे। पहले बम वर्षा के बाद लोगों ने शहर छोड़ दिया, ब्लैकआउट लागू हो गए और रात में पूरा नगर अंधेरे में रहने लगा। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, श्रील प्रभुपाद, पूरा कलकत्ता खाली हो गया, शायद केवल मैं और कुछ लोग रह गए। मैंने अपने पुत्रों को नवदीप भेज दिया, धाम भेज दिया उन्होंने, और मेरे पुत्री को तो ब्याह हो ही गया था। मेरी पत्नी ने कलकत्ता से बाहर जाने से इनकार किया, उनको भी रहना पड़ रहा था, जो पत्नी थी। उसने कहा, मुझ पर बम गिरने दो, लेकिन मैं कहीं जाऊंगी नहीं, इसलिए मुझे कलकत्ता में रहना पड़ा। तो पत्नी थे, मैंने रात भर कलकत्ता पर बम वर्षा होती देखी है। मैं भोजन कर रहा था जब भोको बजा। प्रबंध ये था कि हर घर में सुरक्षा कक्ष बना था। मैं भूखा था, इसलिए पहले मैंने भोजन समाप्त किया, तब मैं सुरक्षा कक्ष में गया और बम वर्षा आरंभ हो गई। मैं सोच रहा था कि ये भी कृष्ण का एक रूप है, लेकिन वो रूप बहुत प्रिय नहीं था। इस प्रकार की आपदाओं के बीच अभय को कृष्ण भावनामृत का प्रचार और भी अधिक आवश्यक प्रतीत हुआ। युद्ध से थके हारे संसार के लोगों से वो कुछ कहना चाहते थे और एक प्रभावात्मक मंच के लिए उनका मन ललकने लगा, किसी तरह के प्रकाशन के लिए जिसके माध्यम से इस संसार की समस्याओं को शास्त्रों की दृष्टि से अपने आध्यात्मिक गुरुदेव से निर्भीक शैली में प्रस्तुत कर सके। विचारों की कमी नहीं थी और अपने व्यवसाय से वो इसी उद्देश्य के लिए धन बचा रहे थे, तो भी वे ऐसा कोई प्रकाशन कैसे निकाल सकते थे। जब कृष्ण भक्ति सिद्धांत के वरिष्ठ शिष्य और विद्वान सन्यासी भी वैसा नहीं कर सकते थे। अपने गुरु भाइयों में उन्होंने अपने को कभी बड़ा विद्वान नहीं माना था, यदि वे उन्हें कवि कहते थे और अब वे भक्ति विद्वान कहलाने लगे थे। अब दो उनको टाइटल थे, तो कवि पहले दिया गया था जब उन्होंने अपने गुरु के गुणगान में कविता लिखी थी, और दूसरा श्रीधर महाराज और सारंग महाराज ने उनको भक्ति विद्वान ये उपाधि गृहस्थ आश्रम में थे तभी प्रदान की थी। तब भी एक ग्रस्त होने के नाते उनसे आशा नहीं की जाती थी कि एक पत्रिका निकालने में वे आगुआ बने या अपनी कोई निजी पत्रिका निकाले। लेकिन समय बदल गया था। दी हार्मोनिस अंग्रेजी पत्रिका श्री भक्ति सिद्धांत के तिरोधन के कुछ समय पहले से प्रकाशित नहीं हुई थी। लगभग एक दशक बीत गया था और गौड़ियामठ मुकदमेबाजी में ही इतना व्यस्त था कि प्रचार के लिए उसके पास समय ही नहीं था। जिस अथक प्रयास के कारण 10 वर्षों तक नदिया प्रकाश को प्रतिदिन लगातार प्रकाशित किया गया था, उसका तिरोधान हो गया था। नदिया प्रकाश मैगजीन था उनका। विभिन्न स्थानों में स्थापित चारों प्रेस बंद हो चुके थे, जो भक्तिनाथ ठाकुर के अधिकृत पुत्र के निर्देशन में दिव्य साहित्य का निरंतर प्रकाशन कर रहे थे। कुंज बिहारी ने उन्हें बेच दिया था। समय बदल चुका था। गौड़ियामठ केवल झगड़े में रत था, जबकि भक्तिविहीन लोग विश्व युद्ध में एक दूसरे का वध कर रहे थे। 6 सीताकांत बैनर्जी पर अपने सामने के कमरे में बैठे अभय सोचते लिखते पांडुलिपि को संपादित करते और एक पत्रिका के लिए उसे टाइप करते। पृष्ठ के ऊपरी सिरे पर उन्होंने एक लंबा चौकोर शब्द चित्र बनाया। ऊपर बाई ओर कोने में भगवान चैतन्य का चित्र था, जो सूर्य की किरणों के समान प्रकाश की किरणों से दैदीप्यमान था। नीचे दाई ओर जन समुदाय का छाया चित्र था जो अंधेरे में डूबा था, किंतु भगवान चैतन्य से प्रकाश पाने की टोहों में लगा था। और भगवान चैतन्य और जन समुदाय के बीच पत्रिका का नाम बैक टू गॉडहेड पता की तरह फैला रहा था। ये बैक टू गॉडहेड का लोगो प्रभुपाद ने उसी समय बनाया था। नीचे दाएं कोने में लिखने की मुद्रा में बैठे श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती का चित्र था, जो विचार मग्न ऊपर देख रहे थे। शब्द चिन्ह के ऊपर आदर्श वाक्य अंकित था, भगवान प्रकाश है, अविद्या अंधकार है। जहाँ भगवान है वहाँ अविद्या नहीं है। शब्द चित्र के नीचे निम्नांकित पंक्तियां थी, संपादित और स्थापित कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद के प्रत्यक्ष आदेश के अधीन श्री अभय चरण दे द्वारा। अपने व्यवसाय के सिलसिले में अभय छपाई का कुछ अनुभव पहले ही प्राप्त कर चुके थे और पांडुलिपि पूरी होने के बाद वे उसे सरस्वती प्रेस में ले गए, जो उस समय बंगाल का सबसे अच्छा छापखाना था। उन्होंने कलकत्ता के प्रतिष्ठित पुस्तक विक्रेता थेंकर स्पिंक एंड कंपनी को अपना एजेंट बनाया, जिसकी जिम्मेदारी थी कि वो पत्रिका का वितरण, पुस्तक भंडारों, पुस्तकालयों और कई विदेशों में करे। लेकिन जब वो कागज खरीदने गए तो उन्हें सरकारी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा। युद्ध और तर्जन्य कागज की कमी के कारण अभय ने जो कुछ लिखा था सरकार उसका परीक्षण राष्ट्रीय आवश्यकताओं की कसौटी पर करना चाहती थी। संसार की संकटकालीन स्थिति में एक सामान्य नागरिक के धार्मिक पत्र को उच्च प्राथमिकता मिलना कठिन था। कागज के लिए अभय की प्रार्थना योग्य कारण बताकर अस्वीकृत कर दी गई, लेकिन वे अड़े रहे। उन्होंने अपील की कि भगवान की शिक्षाओं की छपाई में कागज का इस्तेमाल बर्बादी नहीं था और उस समय की संकटग्रस्त स्थिति में तो ये असामायिक नहीं था। अंत में 44 पृष्ठों के बैक टू गॉडहेड के प्रथम संस्करण को छापने की अनुमति मिल गई। अभय चरण अपने पाठकों का अभिवादन इस आदर्श वाक्य से किया कि भगवान प्रकाश है, अविद्या अंधकार है। जब मनुष्य भूल जाता है कि वो भगवान की संतान है
और शरीर से अपना तादात्म्य करता है तब वो अज्ञान में होता है। उस समय मनुष्य के समान उस मनुष्य के समान है जो गाड़ी के कल पुर्जन से संबंध में तो जानता है लेकिन चालक के बारे में कोई ज्ञान नहीं रखता। इस प्रकार कृष्ण प्रभुपाद ने अपना पहला जो भगवत दर्शन है बैक टू गॉड इन मैगजीन है वो प्रकाशित किया था अपने गुरु महाराज के आदेश के अनुसार। श्री प्रभुपाद लीलामृत के श्री प्रभुपाद।